नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मटियाला विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 400 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा, रामलीला मैदान से 500 ई बसों का शुभारंभ किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त अपने स्तर पे ही 50 करोड़ रुपए तक की योजनाओं और कार्यों को स्वीकृति दे सकेंगे। दिल्ली पुलिस ने 48 किलोग्राम मादक पदार्थ के साथ 7 तस्करों को गिरफ्तार किया। और कौशल मेला 2026 में राजधानी के 100 से अधिक विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मटियाला विधानसभा के विकास कार्यों के लिए 400 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ किया। श्रीमती गुप्ता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस योजना के माध्यम से मटियाला विधानसभा में बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, पेयजल व्यवस्था और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में मटियाला में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, अटल कैंटीन जैसे अनेक जन सुविधाओं का विस्तार किया गया है।
मैंने भी पूरी ताकत लगा करके ये रंग लिया। मैं अपने इस गांव और देहात के क्षेत्र को फंड की कमी नहीं होने दूँ। दिल्ली में सबसे ज्यादा फंड यदि किसी विधानसभा को मिला है तो वो मटियाला विधानसभा को मिला है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग और पीतमपुरा में भी कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि कल रामलीला मैदान से 500 ई बसों का शुभारंभ किया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि कल दिल्ली सरकार के एक वर्ष पूरे हो जाएंगे, जिसके अंतर्गत कल से 2 मार्च तक दिल्ली सरकार जन जागरूकता कार्यक्रम शुरू करेगी।
8 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक हम पूरा एक भव्य आयोजन दिल्ली की जनता तक पहुंचने के लिए, दिल्ली के लोगों तक जा करके अपनी रिपोर्ट कार्ड देने का काम शुरू करेंगे। कल से हम उद्घाटन, जो सरकार के अनेकों कार्यक्रमों के शिलान्यास, उद्घाटन, अलग अलग विभागों के विकास कार्य, अनेकों परियोजनाओं को हम कल से शुरू करेंगे।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज रोहिणी विधानसभा में कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन योजनाओं के अंतर्गत पार्किंग, बाउंड्री वॉल, मनोरंजन केंद्र और पार्क में ओपन जिम शामिल हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुप्ता ने कहा कि इन योजनाओं से क्षेत्रवासियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं, स्वच्छ और सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध होगा। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी में जल बोर्ड के चल रहे कार्य स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री सूद ने कहा कि गुरुवार को हुए हादसे की घटना के वास्तविक कारणों की तकनीकी और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर गहन जांच कराई जाएगी। मामले की जानकारी देते हुए श्री सूद ने कहा कि जिन अधिकारियों पर लापरवाही का संदेह पाया गया है, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जल मंत्री जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए, हमने मुख्यमंत्री जी के इंटरवेंशन के बाद उन सभी को जिनके ऊपर लथार्जी का अंदेशा था उन सभी को सस्पेंड किया है, और इस साइट पर जो भी कमी थी उसके लिए पुलिस के माध्यम से भी जल बोर्ड और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
राजधानी दिल्ली में भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की वार्षिक सफाई के कारण कल श्रीनिवासपुरी और सोमवार को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और ECI ओखला फेज 1 में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। एक रिपोर्ट।
दिल्ली जल बोर्ड ने इन क्षेत्रों के निवासियों को आवश्यकता अनुसार पानी इकट्ठा रखने की सलाह दी है। इसके अलावा जल बोर्ड ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर निवासी जल बोर्ड के कंट्रोल नंबर 1916 पर फोन कर पानी के टैंकर भी मंगवा सकते हैं। वहीं दिल्ली जल बोर्ड ने जानकारी दी है कि शक्तिनगर रेलवे ब्रिज के पास चंद्रावल जल कार्य में रिसाव की मरम्मत के कारण कमलानगर, करोल बाग, शक्तिनगर, पटेल नगर और आसपास के इलाकों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने बताया चंद्रावल वाटर वर्क्स की 900 डायमीटर की मरम्मत के कारण 11 फरवरी को सुबह 9 बजे से अगले 24 घंटे के लिए पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड ने लोगों को सलाह दी है कि वे पानी का समझदारी से इस्तेमाल करें। इसके अलावा पानी के टैंकरों के लिए जल बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं। आदित्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। सरकार ने नगर निगम आयुक्त के वित्तीय अधिकार को 5 करोड़ से अधिक करके 50 करोड़ कर दिया है। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अब आयुक्त अपने स्तर पर ही 50 करोड़ रुपए तक की योजनाओं और कार्यों को स्वीकृति प्रदान कर सकेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि इसके अंतर्गत सड़कों, नालों, सफाई व्यवस्था, सामुदायिक सुविधाओं और अन्य बुनियादी नागरिक सेवाओं से जुड़े कार्यों को अब तेजी मिलेगी। इसके अलावा बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा कर लोगों को शीघ्र लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज ने केंद्रीय बजट 2025-26 को विकसित भारत 2047 की ओर महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि यह बजट सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देता है। दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री इंद्राज ने कहा कि बजट में सामाजिक न्याय और कल्याण से जुड़े क्षेत्रों के लिए लगभग 12.5% की वृद्धि कर करीब 14,800 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों और युवाओं को 9,200 करोड़ से अधिक का प्रावधान और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए लगभग 1,350 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही सहकारिता क्षेत्र में लगभग 1,000 करोड़ से अधिक के प्रावधान के साथ करीब 45% की वृद्धि की गई है। समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि इससे कृषि, डिजिटलीकरण, प्रशिक्षण और रोजगार, कमजोर तथा वंचित वर्गों, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाला भारत एआई इंपैक्ट सम्मेलन 2026 वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई संबंधी चर्चाओं को वास्तविक परिणामों में बदलने पर केंद्रित होगा। इससे नागरिकों को, विशेष रूप से विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ के नागरिकों को लाभ होगा। डिजिटल इंडिया हमारे विशेषज्ञों से पूछे विषय पर इंडिया एआई मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेख सिंह ने कहा कि यह शिखर सम्मेलन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शासन, स्टार्टअप, सेवाओं और रोजगार में एआई के व्यवहारिक अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करेगा। यह शिखर सम्मेलन तकनीकी विमर्श से आगे बढ़कर जन केंद्रित समाधानों पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने कहा कि एआई पहले से ही पूरे भारत में लोगों के जीवन को बदल रहा है, अब जनहित को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनी में से एक प्लास्ट इंडिया 2026 नई दिल्ली में चल रही है। यह 6 दिवसीय कार्यक्रम विनिर्माण के नेतृत्व वाले विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक आत्मनिर्भर औद्योगिक आधार बनने पर केंद्रित है। यह प्रदर्शनी युवाओं और स्टार्टअप्स को सतत प्लास्टिक समाधान तलाशने का मंच प्रदान करती है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने उम्मीदवारों को बेहतर सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अपने कॉल सेंटर के कामकाज के घंटे बढ़ा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
यूपीएससी ने एक बयान में कहा कि सिविल सेवा परीक्षा सीएसआई और भारतीय वन सेवा आईएफओएस परीक्षा 2026 के आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक कॉल सेंटर शनिवार, रविवार और छुट्टियों सहित सभी दिन चालू रहेगा। ये सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 2 शिफ्ट में कार्य करेगा। इससे उम्मीदवारों को नियमित कार्य समय के बाद भी सहायता प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा आवेदकों के प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए सेंटर में कर्मचारियों की संख्या दोगुनी कर दी गई है। इस संबंध में यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि कॉल सेंटर के कामकाज की समय सीमा का विस्तार उम्मीदवारों के लिए सुगमता, सुलभता और समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला का हिस्सा है। सुपर्णा और आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
दिल्ली मेट्रो ने कहा कि आज रात 11 बजे से लेकर कल सुबह 8 बजे तक खानपुर टी पॉइंट से हमदर्द रेड लाइट संगम विहार तक मेहरौली बदरपुर रोड पर मेट्रो निर्माण कार्य के कारण यातायात बाधित रहेगा। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि साकेत से संगम विहार का यातायात खानपुर टी पॉइंट से चिराग दिल्ली की ओर और संगम विहार से साकेत का यातायात हमदर्द रेड लाइट से रविदास मार्ग गोविंदपुरी की ओर मोड़ दिया गया है। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाकर ही घर से निकलें। दिल्ली पुलिस ने आज एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि उनके पास से लगभग 48 किलोग्राम का मादक पदार्थ जब्त किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 50 करोड़ रुपए से अधिक है। पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों को राजधानी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। राजधानी के जसोला के पैसिफिक मॉल में आज मरम्मत कार्य के दौरान आग लग गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। मीडिया से बातचीत में विभाग के अधिकारी यशवंत मीणा ने बताया कि घटना की सूचना उन्हें दोपहर 12:20 पर मिली थी। श्री मीणा ने कहा कि आग चौथी मंजिल पर लगी थी और वहां एक खाली सिनेमा हॉल में मरम्मत का कार्य चल रहा था।
कॉल मिली थी कि स्पेसिफिक मॉल जसोला में आग है। तुरंत ही नियरेस्ट स्टेशनों से गाड़ी भेजी और आके देखा इसमें चौथी फ्लोर पे धुआं निकल रहा है। पर तुरंत पीछे गेट से पार्किंग एरिया से गए, मेंटेनेंस चल रही थी तो उसमें थर्माकोल के कुछ बंडल रखे थे तो वेल्डिंग के दौरान उस थर्माकोल ने आग पकड़ी है। वे केवल वो थर्माकोल में आग थी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राजघाट स्थित गांधी सत्याग्रह सभागार में आज कौशल मेला 2026 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश के 10 से अधिक कौशल विश्वविद्यालयों और राजधानी के 100 से अधिक कॉलेज और स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल ने किया। श्री गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि कौशल और नवाचार से ही भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, जिसके लिए देश में उद्यमिता का विकास होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कौशल विकास को बढ़ावा दिया है और इस अवधारणा को सशक्त बनाया है। उन्होंने कौशल मेले में विद्यार्थियों के कौशल आधारित परियोजना की सराहना भी की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की संख्या 6 से बढ़कर 23 हो गई है। फरीदाबाद के शैक्षणिक संस्थान के एक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य तथा संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों सहित मुख्य स्वास्थ्य संकेतों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक चलने वाले अमृतकाल के दूसरे चरण के दौरान स्नातक होने वाले विद्यार्थियों को अपनी पेशेवर यात्रा शुरू करने का सौभाग्य प्राप्त है।
जब आप अमृतकाल 2047 को पहुंचने के लिए, जो उसका सेकेंड क्वार्टर है, उसमें आप प्रवेश कर रहे हैं, नेक्स्ट 25 इयर्स आपके हैं, जिसमें आप अपनी आंखों से विकसित भारत को देख सकेंगे। जहां ये आपको सौभाग्य है, वहीं आपके कंधों पर विशेष जिम्मेवारी भी है, क्योंकि इन 2047 वी ऑल हैव टू मेक दिस नेशन अ डेवलप्ड नेशन।
सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर निवेश संबंधी सलाह दे रहे हैं। राजधानी में आज दिनभर हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। विभाग के अनुसार कल सुबह बादल छाए रहने और हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मटियाला विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 400 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा रामलीला मैदान से 500 ई बसों का शुभारंभ किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त अपने स्तर पर ही 50 करोड़ रुपए तक की योजनाओं और कार्यों को स्वीकृति दे सकेंगे। दिल्ली पुलिस ने 48 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 7 तस्करों को गिरफ्तार किया। और कौशल मेला 2026 में राजधानी के 100 से अधिक विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।